श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद् गीता। अथ चतुर्दशोध्याय, चौदहवां बाब। गुज़िश्ता मुख्तलिफ अबवाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने इल्म की शक्ल को साफ किया। बाब चार के 19वें श्लोक में उन्होंने बताया कि जिस इंसान के जरिए पूरे ज़राए से शुरू किया गया मुअय्यना अमल का बर्ताव बतसलसुल तरक्की करते करते इतना लतीफ हो गया कि ख्वाहिश और इरादों का पूरी तरह खात्मा हो गया, उस वक्त वो जिसे जानना चाहता है उसका रूबरू एहसास हो जाता है, उसी एहसास का नाम इल्म है। 13वें बाब में इल्म की तशरीह की। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इल्म तसव्वुफ में यकसा हालत और उनसुर के बतौरे माने माबूद का रूबरू दीदार इल्म है। मैदान और आलिमे मैदान के रास को जाहिर कर लेना ही इल्म है। इल्म का मतलब मजहबी मुनाजिरा नहीं, शरीयतों को याद कर लेना ही इल्म नहीं है। रियाजत की उस हालत का नाम इल्म है जहां वो उनसुर जाहिर होता है। माबूद के बदी ही दीदार के साथ मिलने वाले एहसास का नाम इल्म है। इसके बरखिलाफ जो कुछ भी है जहालत है। इस तरह सब कुछ बता लेने पर भी पेश करदा बाब 14 में जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उन उलूम में भी बेहतरीन इल्म को मैं फिर भी तुझे बताऊंगा। जोग के मालिक उसी को दोहराने जा रहे हैं क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनी पुनी देखिया, अच्छी तरह मुताला की हुई शरीयत भी बार बार देखनी चाहिए। इतना ही नहीं, जैसे जैसे आप रियाजत की राह पर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे उस माबूद से निस्बत पाते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान से नए नए एहसासात मिलेंगे। ये इल्म मुर्शिद की शक्ल में अजीम इंसान ही देते हैं। लिहाजा श्री कृष्ण कहते हैं मैं फिर भी कहूंगा। जहन यानी सूरत ऐसा किरतास है जिस पर तासुरात का नक्श हमेशा बना रहता है। अगर राह रो को माबूद से निस्बत दिलाने वाली समझ धुंधली पड़ती है तो इस जहन के किरतास पर कुदरत नक्श होने लगती है जो बर्बादी की वजह है। लिहाजा तकमील तक रियाजत कश को माबूद से मुतालिक जानकारी को दोहराते रहना चाहिए। आज याद जिंदा है लेकिन आगे आने वाले हालात में दाखिला हासिल होने के साथ ये हालत नहीं रह जाएगी। लिहाजा काबिले एहतराम महाराज जी कहा करते थे कि इल्म तसव्वुफ का गौर फिक्र रोज करो, एक तस्बीह रोज घुमाओ। जो फिक्र के साथ घुमाई जाती है बाहर की तस्बीह नहीं। ये तो रियाजत कश के लिए है लेकिन जो हकीकी मुर्शिद होते हैं वो मुसलसल उस राह रो के पीछे लगे रहते हैं, अंदर उसकी रूह के साथ बेदार होकर और बाहर अपने तर्ज अमल से उस नए हालात से बाखबर कराते चलते हैं। जोग के मालिक श्री कृष्ण भी अजीम इंसान थे। अर्जुन मुकल्लिद के मुकाम पर है, उसने उनसे संभालने की गुजारिश की थी। लिहाजा जोग के मालिक श्री कृष्ण का कौल है कि उलूम में भी बेहतरीन इल्म को मैं फिर तुझे बताऊंगा। श्री भगवान वाचा।
परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता।
अर्जुन, उलूम में भी बेहतरीन इल्म आला इल्म को मैं फिर तुझे बताऊंगा, यानी जिसे पहले कह चुके हैं, जिसे जानकर सारे सूफी हजरात इस दुनिया से नजात पाकर आला कामयाबी को हासिल करते हैं, यानी जिसके बाद कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं रहता।
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये नव्यथन्ति च।
इस इल्म का उपाश्रित्य नजदीक से पनाह लेकर अमली तौर से चलकर करीब पहुंचकर मेरी हकीकी शक्ल को हासिल करने वाले लोग तकलीफ की इब्तिदा में दोबारा जन्म नहीं लेते और प्रलय के वक्त नजा यानी जिस्म से कता ताल्लुक होते वक्त बेकरार नहीं होते, क्योंकि अजीम इंसान के जिस्म का खात्मा तो उसी दिन हो जाता है जब वो हकीकी शक्ल को हासिल कर लेता है। उसके बाद उसका जिस्म रहने के लिए महज एक ठिकाना रह जाता है, दोबारा जन्म लेने के लिए जगह कहां है जहां लोग जन्म लेते हैं। इस पर श्री कृष्ण इरशाद फरमाते हैं,
मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
ऐ अर्जुन, मेरे महद ब्रह्म यानी आठ बुनियादी खसाइल तमाम जानदारों की शक्ल यानी योनि है, और मैं उसमें जी हिस की शक्ल वाले तुख्म को कायम करता हूं। उस मुतहर्रिक व साकिन के इत्तेफाक से सभी जानदारों की तखलीक होती है।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता।
कौन ते, सारी शक्लों यानी योनियों में जितने जिस्म पैदा होते हैं उन सब की योनि हामिला मादर आठ किस्मों वाले बुनियादी खसाइल हैं, और मैं ही तुखम रेजी करने वाला पिदर हूं। दीगर कोई ना मादर है ना पिदर। जब तक बेहिस और जीहिस का इत्तेफाक रहेगा पैदाइशों के सिलसिले जारी रहेंगे, वसीला तो कोई ना कोई बनता ही रहेगा। हसास रूह बेहिस कुदरत में क्यों बंध जाती है? इस पर इरशाद फरमाते हैं,
सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।
बाजुए अजीम अर्जुन, मलकाते फाजिला यानी सत्व गुण, मलकाते रद्दिया यानी रजोगुण, और मलकाते मजमूम यानी तमोगुण, कुदरत से पैदा हुई तीनों सिफात ही इस लाफानी जी रूह को जिस्म में बांधती है। किस तरह?
तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ।
बेगुनाह अर्जुन, इन तीनों सिफात में रोशनी पैदा करने वाला बेऐब मलकाते फाजिला तो निर्मल त्वात, शफाफ होने की बिना पर आराम और इल्म की फरिश्तगी से रूह को जिस्म में बांधता है। मलकाते फाजिला भी बंदिश ही है, फर्क इतना ही है कि आराम वाहिद माबूद में है और इल्म बदी ही दीदार का नाम है। मलकाते फाजिला का हामिल इंसान तब तक कैद में है जब तक माबूद का बदी ही दीदार नहीं हो जाता।
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं।
ऐ अर्जुन, लगाव की जीती जागती शक्ल मलकाते रद्दिया यानी रजोगुण है, इसे तू ख्वाहिश और रगबत से पैदा हुआ समझ। वो जीह रूह को कर्म संगेन अमल और उसके समरे की रगबत में बांधता है, वो अमल में लगा देता है।
तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत।
अर्जुन, तमाम जिस्म वालों को अपने फरेब में लेने वाले मलकाते मजमूम यानी तमोगुण को तू जहालत से पैदा हुआ समझ। वो इस रूह को मदहोशी यानी नाकाम कोशिश काहिली कि कल करेंगे और नींद के जरिए गिरफ्त में लेता है। नींद का माना यह नहीं कि मलकाते मजमूम का हामिल इंसान ज्यादा सोता है, जिस्म सोता हो ऐसी बात नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब रात में सारे लोग सोते रहते हैं तो जोगी जागता रहता है। दुनिया ही रात है, मलकाते मजमूम का हामिल इंसान इस दुनिया की तमसील शबीह में शबो रोज मशगूल रहता है, रूहानी हकीकी शक्ल की तरफ से गाफिल रहता है। यही मलकाते मजमूम वाली नींद है। जो इसमें फंसा है सोता है। अब तीनों सिफात की बंदिश की इज्तिमाई शक्ल बताते हैं।
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत।
अर्जुन, मलकाते फाजिला आराम की तरफ माइल करता है, दाइम सुकूने आला के रास्ते पर ले चलता है। मलकाते रद्दिया अमली राह पर चलने की तरगीब देता है और मलकाते मजमूम इल्म को ढक करके मदहोशी में यानी बातिन की नाकाम कोशिशों में लगाता है। जब सिफात एक ही जगह पर एक ही दिल में है तो अलग अलग कैसे बढ़ जाती है, इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण बताते हैं।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा।
ऐ अर्जुन, मलकाते रद्दिया और मलकाते मजमूम को दबाकर मलकाते फाजिला गामजन होता है, वैसे ही मलकाते फाजिला और मलकाते मजमूम को दबाकर मलकाते रद्दिया बढ़ता है। और इस तरह मलकाते रद्दिया और मलकाते फाजिला को दबाकर मलकाते मजमूम बढ़ता है। यह कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सी खुसूसियत काम कर रही है?
सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत।
जिस दौर में इस जिस्म और बातिन के साथ सारे हवास में खुदाई नूर और समझने की ताकत पैदा होती है, उस वक्त ऐसा समझना चाहिए कि मलकाते फाजिला खुसूसी इजाफे की तरफ माइल है। और
लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शम स्प्रिहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।
अय अर्जुन, मलकाते रद्दिया में खास इजाफा होने पर लालच, काम में लगने की कोशिश, आमाल की शुरुआत, बेइत्मिनानी यानी मन की शोखी, दुनियावी तायुशात की हवस, ये सारी चीजें पैदा होती हैं। अब मलकाते मजमूम के इजाफे में क्या होता है?
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन।
अर्जुन, मलकाते मजमूम के इजाफा होने पर अप्रकाशः यानी बेनूरी, नूर आला माबूद की निशानी है, खुदाई नूर की तरफ बढ़ने की खसलत, कार्यम कर्म यानी जो करने के लायक खास तरीके कार है उसमें अदम रुझान, बातिन में नाकाम कोशिशों का बहाव और दुनिया में फरीफ्ता करने वाले खसाइल, ये सभी पैदा होते हैं। इन सभी चीजों की पैदाइश होती है। इन सिफात के इल्म से फायदा क्या है?
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते।
जब ये जी रूह मलकाते फाजिला के इजाफे के दौर में वफात को हासिल करती है, जिस्म को तर्क करती है, तब सालिहीन के बेदाग मावराई अवालिम को हासिल करती है। और
रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते।
मलकाते रद्दिया का इजाफा होने पर मौत को हासिल करने वाला आमाल की रगबत वाले इंसानों में जन्म लेता है, और मलकाते मजमूम के इजाफे में मरा हुआ इंसान जाहिल शक्लों यानी योनियों में जन्म लेता है, जिसमें हशरातुल अर्ज वगैरह तक योनियों का फैलाव है। लिहाजा सिफात में भी इंसानों को सालेह सिफात वाला होना चाहिए। कुदरत का ये खजाना आपकी हासिल की हुई सिफात को मौत के बाद भी उन्हें आपको महफूज तरीके से लौटाता है। अब देखें इसका समरा।
कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलम्।
सालेह अमल का समरा, सालेह बेदाग सुख, इल्म और तर्क दुनिया वगैरह बताए गए हैं। मलकाते रद्दिया वाले अमल का समरा तकलीफ और मलकाते मजमूम वाले अमल का समरा जहालत है। और
सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभैव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च।
मलकाते फाजिला से इल्म पैदा होता है, यानी खुदाई एहसास का नाम इल्म है। खुदाई एहसास का बहाव होता है। मलकाते रद्दिया से बिलाशक लालच पैदा होती है, और मलकाते मजमूम से मदहोशी, फरीफ्तगी, काहिली यानी जहालत ही पैदा होती है। इनकी पैदाइश का क्या अंजाम है?
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा।
मलकाते फाजिला का हामिल इंसान उस हकीकी माबूद की तरफ माइल होता है, जन्नत नशीन होता है। मलकाते रद्दिया के हामिल इंसान औसत दर्जे के होते हैं, जिनके पास ना सात्विकम इरफान वो तर्क दुनिया ही होता है, और ना बदजात हशरातुल अर्स की योनियों में जाते हैं, बल्कि दोबारा जन्म हासिल करते हैं। और काबिल नफरत मलकाते मजमूम में लगे हुए गुमराह इंसान अधोगति यानी जवाल यानी जानवर, चिड़िया, हशरातुल अर्ज वगैरह बदजात योनियों को हासिल करते हैं। इस तरह तीनों सिफात किसी ना किसी शक्ल में यानी योनि के वजूहात हैं। जो इंसान इन सिफात से नजात पा लेते हैं वो आवागुण से आजाद हो जाते हैं और मेरे मकाम को हासिल कर लेते हैं। इस पर कहते हैं,
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति।
जिस दौर में नाजिर रूह तीनों सिफात के अलावा दूसरे किसी को कारकुन नहीं देखती और तीनों सिफात से बे इंतहा मावरा उनसुरे आला को यानी व्यक्ति जान लेती है, उस वक्त वह इंसान मेरे मकाम को हासिल कर लेता है। यह अकली तस्लीम शुदगी नहीं है कि सिफात में बर्ताव करते हैं, रियाजत करते करते एक ऐसा मकाम आता है जहां उस आला का एहसास जाग जाता है कि सिफात के अलावा कोई कारकुन नजर नहीं आता। उस वक्त इंसान तीनों सिफात से मुबर्रा हो जाता है। यह ख्याली तस्लीम शुदगी नहीं है, और इसी पर आगे कहते हैं,
गुणानेतानतीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते।
इंसान इन कसीफ अजसाम की पैदाइश की वजह वाली तीनों सिफात से मुबर्रा होकर जन्म, मौत, जईफी व हर तरह की तकलीफों से खास तौर से आजाद होकर लाफानी उनसुर को हासिल करता है। इस पर अर्जुन ने सवाल खड़ा किया। अर्जुन उवाच,
कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानीता अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैता स्त्रीन गुणानति वर्तते।
बंदा परवर, इन तीनों सिफात से मावरा इंसान किन किन सलाहियतों यानी निशानियों से मुजयन होता है और किस तरह के बर्ताव वाला होता है और इंसान किस तरीके से इन तीनों सिफात से मुबर्रा होता है। श्री भगवान उवाच।
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति।
अर्जुन के मजकूरा बाला तीनों सवालात का जवाब देते हुए जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो इंसान मलकाते फाजिला के जेरे असर खुदाई नूर, मलकाते रद्दिया के जेरे असर अमल में लगने का ख्याल और मलकाते मजमूम के जेरे असर फरीफ्तगी को ना तो रागिब होने पर बुरा समझता है और ना फारिग होने पर उनकी ख्वाहिश ही करता है और
उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते।
जो इस तरह लाताल्लुक इंसान की तरह कायम हुआ, सिफात के जरिए मुतजलजिल नहीं किया जा सकता। सिफात सिफात के अंदर ही बर्ताव करती हैं, ऐसा हकीकतन जानकर उस हालत से मुतजलजिल नहीं होता, तभी वो सिफात से मुबर्रा होता है।
सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति।
जो मुसलसल खुद में यानी खुद शनासी की हालत में कायम है, आराम और तकलीफ में मुसावी है, मिट्टी पत्थर और सोना एक ही नजर से देखता है, साबिर है, जो पसंदीदा और नापसंदीदा को बराबर समझता है, अपनी नुक्ताचीनी और तारीफ में भी कोई फर्क नहीं मानता है और
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते।
जो इज्जत वो जिल्लत में मुसावी है, दोस्त और दुश्मन में भी मुसावात देखता है, वो मुकम्मल शुरुआतों से मुबर्रा हुआ इंसान फनाफिल्ला कहा जाता है। श्लोक 22 से 25 तक सिफात से मुबर्रा इंसान की पहचान और बर्ताव बताए गए कि वो मुतजलजिल नहीं होता, सिफात के जरिए उसे मुतजलजिल नहीं किया जा सकता, साकिन रहता है। अब पेश है सिफात से मुबर्रा होने का तरीका।
मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
जो इंसान लाशरीक बंदगी के जरिए यानी माबूद के अलावा दूसरी दुनियावी यादों से पूरी तरह मुबर्रा होकर जोग के जरिए यानी उसी मुअय्यना अमल के जरिए मुझे मुसलसल याद करता है, वो इन तीनों सिफात को अच्छी तरह नजरअंदाज करके मावरा माबूद के साथ यकसां होने के काबिल होता है, जिसका नाम कल्प यानी बदलाव है, माबूद से यकताई के साथ जुड़ जाना ही हकीकी कल्प यानी बदलाव है। लाशरीक ख्याल से मुअय्यना अमल का बर्ताव किए बगैर कोई भी सिफात से मुबर्रा नहीं होता। आखिर में जोग के मालिक फैसला देते हैं।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।
हे अर्जुन, इस लाफानी माबूद की यानी जिसके साथ वो कल्प करता है, जिसके अंदर सिफात से मुबर्रा यकताई के एहसास से दाखिल होता है, जावेदानी की, दायमी दीन की और उस सालिम यकसा मसरत की मैं पनाह हूं, यानी रूह मुतलक में कायम मुर्शिदे कामिल ही इन सब की पनाह है। श्री कृष्ण एक जोग के मालिक थे। अब अगर आपको गैर मरई, लाफानी, रब, दायमी दीन, सालिम और यकसा मसरत की जरूरत है तो किसी हक शनास गैर मरई इलाह में कायम अजीम इंसान की पनाह लें, उनके वसीले से ही यह मुमकिन है। मग़्ज़े सुखन निष्कर्ष। इस बाब की इब्तिदा में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, उलूम में भी बे इंतहा अफजल आला इल्म को मैं फिर भी तुझे बताऊंगा, जिसे जानकर आरिफ हजरात इबादत के जरिए मेरे मकाम को हासिल करते हैं। फिर तकलीफ की इब्तिदा में वो जन्म नहीं लेते, लेकिन जिस्म की मौत तो होनी ही है, उस वक्त वो गमजदा नहीं होते। दर हकीकत वो जिस्म तो उसी दिन तर्क कर देते हैं जिस दिन मकाम को हासिल करते हैं। हुसूल जीते जी होता है, लेकिन जिस्म का खात्मा होते वक्त भी वो गमजदा नहीं होते। कुदरत से ही पैदा हुए मलकात फाजिला, मलकात रद्दिया और मलकात मजमूम, ये तीनों सिफात ही इस जी रूह को जिस्म में बांधते हैं। दो सिफात को दबाकर तीसरी खसूसियत की तरक्की की जा सकती है। सिफात काबिले तब्दील हैं। कुदरत जो अबदी है, खत्म नहीं होती, बल्कि सिफात के असरात को दरकिनार किया जा सकता है। सिफात मन को मुतासिर करती हैं। जब मलकात फाजिला का इजाफा होता है तो खुदाई नूर और सोचने की ताकत रहती है। मलकात रद्दिया मुलविस करने वाला होता है, उस वक्त अमल की लालच रहती है, लगाव रहता है। और बातिल में मलकात मजमूम मुतहर्रिक होने पर काहली और गफलत घेर लेती है। मलकात फाजिला के इजाफे में मौत को हासिल हुए इंसान जन्नत नशीन होते हैं। मलकात रद्दिया में इजाफा होने पर इंसान इंसानी शक्ल यानी योनि में ही लौटकर वापस आता है, और मलकात मजमूम का इजाफा होने पर इंसान जिस्म को तर्क करके यानी जानवर, हशरातुल अर्ज वगैरह बदजात योनि को हासिल करता है। लिहाजा इंसानों को बतदरीज बेहतरीन सिफात वाले मलकात फाजिला की जानिब बढ़ना चाहिए। दर हकीकत तीनों सिफात किसी न किसी योनि के ही सबब हैं। सिफात ही रूह को जिस्म में बांधती हैं, लिहाजा सिफात से ला ताल्लुक होना चाहिए। वो जिससे आजाद होते हैं उसके हकीकी शक्ल बताते हुए जोग के मालिक ने कहा कि आठ बुनियादी खसाइल हामिला वालिदा हैं और मैं ही तुख्म की शक्ल में वालिद हूं, दूसरा ना कोई वालिदा है ना वालिद। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक मुतहर्रिक व साकिन दुनिया में वसीले की शक्ल से कोई ना कोई वालिदैन बनता रहेगा, लेकिन दर हकीकत कुदरत ही वालिदा है और मैं ही वालिद हूं। इस पर अर्जुन ने तीन सवाल खड़े किए कि सिफात से खाली इंसान के क्या निशानात हैं, क्या बर्ताव हैं, किस तरीके से इंसान इन तीनों सिफात से मुबर्रा होता है। इस तरह जोग के मालिक श्री कृष्ण ने सिफात से मुबर्रा इंसान की पहचान और बर्ताव का बयान किया और आखिर में सिफात से मुबर्रा होने का तरीका बताया कि जो इंसान ला शिर्क बंदगी और जोग के जरिए मुसलसल मेरी याद करता है वो तीनों सिफात से मुबर्रा हो जाता है। दूसरे किसी का तसव्वुर ना करते हुए मुसलसल माबूद की फिक्र करना ला शरीक बंदगी है, जो दुनिया के वसलो फिराक से हर तरह आजाद है उसी का नाम जोग है। उसको अमली शक्ल देने के तरीके का नाम अमल है। यज्ञ जिससे पूरा होता है वो हरकत अमल है। ला शरीक बंदगी के जरिए उस मुअय्यना अमल के बर्ताव से ही इंसान तीनों सिफात से मुबर्रा होता है और मुबर्रा होकर माबूद के साथ यकताई के लिए मुकम्मल कल्प को हासिल करने के काबिल होता है। सिफात जिस मन पर असर डालती हैं उसकी तहलील होते ही भगवान के साथ यकताई हो जाती है, यही हकीकी कल्प है। लिहाजा बिला याद इलाही के कोई सिफात से मुबर्रा नहीं होता। आखिर में जोग के मालिक श्री कृष्ण फैसला देते हैं कि वो सिफात से मुबर्रा इंसान जिस माबूद के साथ यकताई की हालत में पहुंचता है उस भगवान की उनसुरे लाफानी की दायमी दीन की और सालिम यक्सा मसरत की मैं ही पनाह हूं, यानी खास कारकुन हूं। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वो पनाहगाह तो चली गई, तब तो बड़े शुभ वाली बात है कि अब वो पनाहगाह कहां मिलेगी। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपना तारुफ कराया कि वो एक जोगी थे, आला मकाम पर फाइज अजीम इंसान थे। शिष्यस्ते हम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा था मैं आपका शागिर्द हूं, आपकी पनाह में हूं, मुझे संभालिए। जगह जगह पर श्री कृष्ण ने अपना तारुफ कराया, मुस्तकिल मिजाज अजीम इंसान की पहचान बताई और उनसे अपना मवाजिना किया। लिहाजा जाहिर है कि श्री कृष्ण एक मर्द कामिल जोगी थे। अब अगर आपको सालिम यक्सा मसरत दाइमी दीन या उनसुरे लाफानी की जरूरत है तो इन सब के हुसूल का मखज़न वाहिद मुर्शिद है। सीधे किताब पढ़कर इसे कोई हासिल नहीं कर सकता। जब वही अजीम इंसान रूह से वाबस्ता होकर रतबान हो जाते हैं तो धीरे धीरे आशिक को रहनुमाई करते हुए उसके मकाम तक जिनमें वह खुद फाइज हैं पहुंचा देते हैं। वही वाहिद वसीला है। इस तरह जोग के मालिक श्री कृष्ण ने अपने को सबकी पनाहगाह बताते हुए इस 14वें बाब का इख्तिताम किया जिसमें सिफात का तफसीली बयान है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता की तमसील उपनिषद व इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में तकसीम सिफात जोग नाम का 14वां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गणानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायः यथार्थ गीता भाष्ये गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोध्यायः। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद जी के जरिए लिखी श्रीमद् भगवत गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में तकसीम सिफात जोग यानी गुणत्रय विभाग योग नाम का 14वां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत।